आपको क्या याद है? आज परीक्षा देने के बाद सब भूल तो नहीं गए ना? कल सबकी परीक्षा ठीक गई? हाँ, कल की चर्चा के मुख्य जो बातें हैं वो कृपया बताइए, शुरुआत से लेकर एक एक कोई बताते जाइएगा। रूप गोस्वामी ने लिखे हुए ग्रंथों की चर्चा की थी संक्षेप में, ठीक है। और उनकी जीवनी, संक्षिप्त रूप में उनकी जीवनी, और क्या चर्चा हुआ? हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। और क्यों हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? सभी ने किया, शेड गोस्वामी ने किया, अन्य ने भी। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से उनको शक्ति प्रदान की थी, शास्त्रों का निरूपण करके सही गौड़ीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए चुने हुए थे महाप्रभु द्वारा। तो और क्या चर्चा हुई थी कल? मन तथा इंद्रियों के बारे में क्या बताया गया था? मन और इंद्रियों को वश में करने से हम गोस्वामी हो सकते हैं, तो गोस्वामी होना जीवन का उद्देश्य है कि गोस्वामी होकर आगे भी कुछ करना है? शुद्ध भक्त बनना है, और शुद्ध भक्त बनने के बाद ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और क्या बातें थी कल? सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे भक्ति मार्ग में हमारी मनोवृत्ति है। और उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है, और हम सब नए भक्त हैं। अपने आप को हमें यही समझना चाहिए। और शुद्ध वैष्णव का स्वरूप लक्षण है शरणागति, जिससे अन्य लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो ये क्यों कहा गया था, ये इस बात की चर्चा क्यों हुई थी? शरणागति की बात आई कैसे?
बहुत से लोगों को अपनी थोड़ी भक्ति करते हैं, इसका गुमान हो जाता है।
मूल कारण ये था कहने का कि भक्ति मार्ग और अन्य मार्गों में ये अंतर है कि भक्ति मार्ग में शरणागति का प्राधान्य होता है, अन्य मार्गों में न तो वो भगवान की कृपा पर इतने निर्भर होते हैं और अपने शक्ति, अपने बुद्धि आदि के ऊपर निर्भर होते हैं, साथ साथ उनके मन में स्वार्थ भी होता है, सूक्ष्म या स्थूल, जो कि शुद्ध भक्त में नहीं होता है। तो ये प्रमुख अंतर हैं एक शुद्ध भक्त और अन्य योगियों में। तो अभी हम उपदेशामृत के पहले श्लोक की शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहला श्लोक उपदेश अमृत का बहुत प्रसिद्ध है। वैसे चार्ट नहीं आया ना अभी तक, वनमाली पर नहीं आया। मेरे साथ ही बैठे थे चार्ट बनाते हुए, यहाँ आना था वो बाकी चार्ट बनाने के लिए। अच्छा, तो ये पहला श्लोक है। वास्तव में इसका कोई निर्धारित छंद नहीं है, ऐसे जैसे अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, तो ये कौन सा छंद है हमें पता नहीं है। और हमने कईयों से पूछा, कोई बता नहीं पा रहे हैं कि ये छंद कौन सा है। कहते हैं कि ये सही, तो रूप गोस्वामी ने तरह तरह के श्लोकों की रचना की है। वाचः वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरः सर्वां अपि इमां पृथिवीं सह शिष्यात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। हाँ बोलिएगा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वान् अपि मां पृथिवीं स शिष्यात्। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं स शिष्यात्। माताजी वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम
जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान योगशहेत धीरः सर्वामपि मां प्रतिदिनं सशिष्यात् वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरपस्थ वेगं योगशहेतधीरः सर्वापि मां पृथिवीं सशिष्यात्
वाचः वाणी के वेगम वेग को मनसः मन के क्रोध क्रोध के वेगम वेग को जिह्वा जीव के वेगम वेग को उदर उपस्थ पेट तथा जननेन्द्रियों के वेगम वेग को एतान इन वेगान वेगों को यह जो विषहेत सहन कर सकता है धीरह धीर गंभीर सर्वाम समस्त अपि निश्चय ही इमाम इस पृथिवीम संसार सह वह व्यक्ति शिष्यात शिष्य बना सकता है। अनुवाद भी श्रील प्रभुपाद द्वारा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को मन की मांगों को क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। कृपया दोहराइएगा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को मन की मांगों को क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे यहां सबसे पहले श्लोक में भक्त विनोद ठाकुर के अनुसार चर्चा का विषय क्या है पढ़िएगा। त्रिदंडी गोस्वामी लक्षण क्या मतलब और क्या लिखा है आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण ये वर्णन इस श्लोक में पाया जाता है। तो यहां ये षड वेग कहलाते हैं छह वेग इन छह वेगों के वश में सभी हैं सारे प्राणी इस दुनिया में इन छह वेगों के वशभूत हैं। तो ये षड वेगम ये छह वेग हैं वाचो वेगम मनसह वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम जिह्वा होना चाहिए वास्तव में जिह्वा ने जिह्वा ह के नीच व जिह्वा ह के बाद व तो आप ऐसे उसको समझ लीजिए व और ह नहीं ह और व ठीक है जिह्वा जिह्वा वेगम तो ये छह प्रकार के वेग हैं। घुमाएंगे आप इसको घुमाएंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की का जो तात्पर्य है श्लोक के ऊपर काफी लंबा है प्राय 14 पन्नों 13-14 पन्नों का तात्पर्य है। काफी लंबा है, इसलिए इस तात्पर्य को मैंने विभाजित किया है चार भागों में, ताकि हम समझ सकें कि जब क्रम से पढ़ते पढ़ते हम अच्छी तरह से इस तात्पर्य का विश्लेषण कर पाएंगे, इसे सही तरह से समझ पाएंगे। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में प्रायश्चित्त की बात करते हैं, और ये किताब तो यही है ना आपके पास, तात्पर्य की शुरुआत से लेकर दो तीन और चार, ये तीन पन्ने हैं, शुरुआत से लेकर सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, उसके पहले तक वहां तक ये केवल प्रायश्चित्त की बात हो रही है। ठीक है, अपने ग्रंथ में आप इसे नोट कर सकते हैं, जिनके पास ये ग्रंथ है पन्ने नंबर दो तीन और चार, ठीक है, और दूसरा विषय षड्वेग और भक्ति से इनका निवारण या नियंत्रण कह सकते हैं, इन वेगों का नियंत्रण भक्ति से कैसे किया जा सकता है, ये षड्वेग हैं क्या और भक्ति से किस प्रकार इन वेगों को नियंत्रित किया जा सकता है, ये तात्पर्य का दूसरा भाग है। तो आठवें पन्ने तक जहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है, वहां तक ये दूसरे विषय की चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, फिर वहां से लेकर श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवृत्ति टीका को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुवृत्ति टीका में भी इन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है, परंतु एक अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत, इसलिए प्रभुपाद जी अलग से यहां अनुवृत्ति टीका से प्रमाण दे रहे हैं, और अंत में निष्कर्ष क्या है, सारे चर्चा का इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है, ये अंत में तात्पर्य के अंत में ये आता है। तो ये है सारे तात्पर्य की सूची, ठीक है। वैष्णव ग्रंथ जो होते हैं या वैष्णव पद्धति ऐसी होती है कि या तो एक कोई आचार्य किसी पूर्व आचार्य के ग्रंथ के ऊपर टीका करते हैं, या तो किसी शास्त्र के ऊपर टीका करते हैं, जैसे उपनिषद हो पुराण हो उसके ऊपर टीका करते हैं, या अगर किसी आचार्य ने ग्रंथ की रचना की हो तो उस ग्रंथ की टीका करते हैं, या टीका के ऊपर टीका करते हैं, ऐसे भी कई हैं, टीका के ऊपर टीका की टीका ऐसे भी होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की टीका है। आगे चल के लोग ये भी, जैसे हम आजकल पढ़ते हैं, हाँ ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे कहा और जीव गोस्वामी पाद ने ऐसे टीका में लिखा है, अनेक वर्षों बाद लोग ऐसे भी कहेंगे हाँ भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी ने ऐसे टीका की, उनकी टीका में ऐसे लिखा है, 10,000 वर्षों तक ये ग्रंथ होंगे हम सबके लिए, सारे विश्व के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी की टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी की टीकाओं में आप पूर्व वैष्णव आचार्यों के टीकाओं का सार प्राप्त करेंगे, इसलिए हमारे लिए ये सब महत्वपूर्ण है। तो आइए अभी सबसे पहले प्रायश्चित, ये पहले विषय की चर्चा करते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि अलग अलग भक्त ये पढ़ते जाएंगे, एक एक पैराग्राफ आप अलग से पढ़ते जाइए। जो नए नए भक्त हर बार पढ़ेंगे, अभी और कौन पढ़ेंगे? तात्पर्य को पढ़ना है हमें, कौन पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ तात्पर्य से, थोड़ा जोर से पढ़िए ताकि सभी लोग सुन पाए। आप भी अपने अपने किताबों में देखते जाइएगा।
सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए, इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो फिर वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ चोर।
हाँ तो ठीक है, एक मिनट यही कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है परीक्षित महाराज का? अगर व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, तो प्रायश्चित करने का क्या लाभ है? तो प्रायश्चित और इंद्रियों को वश में करना, इन दोनों का संबंध क्या है? चलिए आगे देखते हैं, इसको जरा घुमाएंगे। संबंध यह है, जब हमारी इंद्रियां और हमारा मन अनियंत्रित रहता है, असंयमित रहता है, तो हम पाप करते हैं। विवश होकर आदमी पाप कर बैठता है। अगर वो जानता भी हो कि ये गलत है, फिर भी उसके इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होने के कारण वो गलत काम कर ही बैठता है, जानकारी होने के बावजूद। इसलिए अनियंत्रित इंद्रियों से व्यक्ति पाप करता है, और पाप करने का फल क्या है? उसे नरक आदि यातनाओं को भुगतना पड़ता है। तो दुख किसके कारण होता है? दुख पाप की वजह से होता है। पाप किसकी वजह से होता है? अनियंत्रित इंद्रियों के कारण होता है, और अनियंत्रित मन के कारण होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी जब भक्ति के 6 लक्षणों की चर्चा होगी, उस समय भी आप इस विषय के ऊपर चर्चा आप करेंगे। तो प्रायश्चित ये क्या है? ऐसे वैदिक शास्त्र अनेक हैं, वैसे तो वेद एक है ज्ञान, लेकिन व्यासदेव जी ने इस एक वेद का विभाजन किया था अनेक वर्गों में। जैसे कर्मकांड है, ये एक कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। तो कर्म कांड के अंतर्गत 80 शास्त्र हैं जिनको धर्म शास्त्र कहते हैं, जैसे मनु संहिता है, मनुस्मृति है आदि, 80 ऐसे हैं। इनमें से 20-25 ऐसे प्रमुख माने जाते हैं जिनमें तरह तरह के विधियों का वर्णन है, जिनका पालन करने से हमें भौतिक सृष्टि में और सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है, पापों के फल का निवारण हम कर सकते हैं, पापों के फल का प्रतिकार करना या प्रायश्चित करना ये भी हो सकता है। तो प्रायश्चित की विधि की विधियां ये धर्मशास्त्रों में पाए जाते हैं, कर्मकांड के शास्त्रों में। नहीं नहीं 80 शास्त्र हैं, जैसे मनु संहिता है, मनुस्मृति है, ये सब धर्मशास्त्र कहलाते हैं। तो इनमें विधियां हैं प्रायश्चित के, कि आपने अगर ये पाप किया है तो इसका फल आपको मिलना है, तो इस पाप की वजह से जो कष्ट होगा आपको, उसका निवारण करने के लिए आपको प्रायश्चित की कोई विधि बताई जाती है, आप ये हवन कीजिए। कभी कभी दुर्भाग्य से हमारे भक्त लोग भी ऐसे कर लेते हैं, कभी जीवन में कोई कठिनाई आ जाती है तो भागे जाते हैं ज्योतिष के पास या कोई तांत्रिक के पास, कोई बाबा के पास, कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कठिनाई है, तो करेंगे नहीं, ये हवन कर लो आप, ये होम कर लो, उस देवी की पूजा कर लो। जब थोड़े साल पहले हमें कोई शारीरिक कष्ट हुआ था तो हमारे कोई शुभचिंतक हैं, वो भक्त नहीं है, तो उन्होंने कुछ ज्योतिष से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि हाँ आपकी कुल देवी जो है वो प्रसन्न नहीं है, तो उनको कहिए कि वैसे धर्मशास्त्र के अनुसार उनको यही सब करना चाहिए, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए यही सब करना चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो ये प्रायश्चित का मार्ग है कि हमने पूर्व कोई पाप किया था या कोई हमारे धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था या कुछ ठीक ठाक नहीं किया, तो इन फल पापों के फल का प्रतिकार करने के लिए ये प्रायश्चित की विधि है। तो जब व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो फिर नरक आदि यातनाओं से बच जाता है, उसे इनका सामना नहीं करना पड़ता। अब यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब प्रायश्चित विषय की चर्चा कर रहे हैं तो विशेष करके श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के पहले अध्याय से चर्चा कर रहे हैं और पांचवें स्कंद में सारे ब्रह्मांड का वर्णन कर चुके हैं सुखदेव गोस्वामी, और वर्णन के दौरान वो नरक लोकों का भी वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के प्रमुख नरक लोक हैं ऐसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, और एक से एक भयानक है सब, सुनने के बाद भी व्यक्ति घबरा जाता है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं छठे स्कंद की शुरुआत में कि आपने बहुत अच्छे ढंग से सारे ब्रह्मांड का वर्णन तो कर लिया, लेकिन मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि व्यक्ति इन नरक लोकों से कैसे बच सकता है, कि उसे क्या करना होगा जिससे कि वो इन यातनाओं से मुक्त हो जाए। क्योंकि परीक्षित महाराज वैष्णव हैं तो बड़े कृपालु हैं, वो सबकी भलाई चाहते हैं, और जब वो सुनते हैं कि नरक लोकों में किस प्रकार की यातना होती है तो उनके मन में करुणा की भावना जागृत हो जाती है कि संसार के लोगों को नरक लोक से कैसे मुक्त किया जाए, कैसे रोका जाए वहां जाने से। तो फिर परीक्षित महाराज ये प्रश्न करते हैं, और इस प्रश्न के दौरान तुरंत सुखदेव जी अपने शिष्य परीक्षित महाराज की परीक्षा करते हैं और कहते हैं प्रायश्चित करना चाहिए। मनु संहिता जैसे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब तक हमारा भौतिक देह है और हम कोई न कोई पाप आदि सब करते हैं तो इनके फल मिलने वाले हैं, इसलिए इस शरीर के अंत होने के पहले ही हमें ये प्रायश्चितों की विधि स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे कि हम नरक लोक से और अन्य जो क्लेश हैं उनसे बच जाएंगे, शीघ्र करना चाहिए। तो उस समय परीक्षित महाराज जो कि बहुत बुद्धिमान थे, तुरंत उन्होंने सुखदेव महाराज के इस प्रस्ताव को नकार दिया, कहा नहीं, हम नहीं स्वीकार करते। और स्वीकार क्यों नहीं करते ये आगे चल के प्रभुपाद जी बताने वाले हैं, लेकिन सर्वप्रथम यहां पर इसका सार है। परीक्षित महाराज ने जो विरोध किया सुखदेव गोस्वामी के सुझाव का, ये विरोध का सार यहां है, क्या है कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। इसका कारण ये है कि आदमी भले प्रायश्चित क्यों न करे, उस पाप के फल से मुक्त क्यों न हो जाए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति से वो मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए पुनः पुनः वो पाप करता रहेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा। तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या मतलब है, ये कहने का अभिप्राय है परीक्षित महाराज का। तो इसी बात को आगे श्रील प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में बढ़ा रहे हैं। हाँ जी पढ़िए।
अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है।
जब बुद्धिमान व्यक्ति यही ग्रंथों तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, और जब यह सुनता है कि चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार दंड को प्रायश्चित मान लिया जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः
ठीक है एक तो यहाँ प्रभुपाद जी कृपया घुमाएंगे। यहाँ चार प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। प्रायश्चित मतलब ये विषय चल रहा है, इसलिए ऊपर प्रायश्चित लिखा है। तो इस विषय के अंतर्गत प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं कि इस दुनिया में चार प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अभी अभी ये बात हमने पढ़ी यहाँ पर। पहले श्रेणी के लोग कौन हैं? जो सुन के सीखते हैं, सबसे बुद्धिमान है। आदमी सुन लेता है कि देखो शास्त्रों में कहा गया है कि सुनना, ये चोरी करना ही अच्छा काम नहीं है, ये पाप है, इससे दंड प्राप्त होता है, इससे दुख मिलेगा, चोरी नहीं करना चाहिए। तो केवल सुन के मात्र ही व्यक्ति सीख जाता है, बड़ा सबसे बुद्धिमान है। इससे निम्न श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, ठीक है मैंने सुना तो है लेकिन देखूं तो सही कि चोरी करते हुए कोई चोर पकड़ा जाए, जब मैं अपने आंखों से देखूंगा तब मुझे विश्वास होगा कि चोरी करना ये कितना हानिकारक है। तो ये दूसरे श्रेणी का व्यक्ति है जो देख के सीखता है, सुनना उसके लिए काफी नहीं होता, सुनने के बाद वो देखना भी चाहता है कि अपनी आंखों से देखूं कि ये कितना हानिकारक है, फिर मैं ये कार्य नहीं करूंगा। वो व्यक्ति देखता है कि सड़क में कोई चोर पकड़ा जाता है, उसकी पिटाई होती है, उसे जेल में डाला जाता है, फिर वो व्यक्ति सोचता है हाँ हाँ बहुत हानिकारक है, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। इससे भी निम्न श्रेणी की बुद्धि वाला व्यक्ति है जो सोचता है, ठीक है मैंने सुना तो है कि चोरी करना ठीक नहीं है, मैंने देखा भी है कि दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया चोरी करते समय, पिटाई हुई, जेल में भेजा गया, दंडित हुआ, फिर भी हो सकता है मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा कि इसका दंड क्या है, कि चोरी करने से कितनी हानि पहुंचती है, तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसकी बुद्धि कम होती है, अल्प बुद्धि वाला होता है, अनुभव से ही सीखता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कि अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक है। परंतु इस सुभाषित का एक दूसरा आधा भाग भी है, एंड अ फूल लर्न्स बाय नो अदर वे, और मूर्ख किसी दूसरे रास्ते से नहीं सीखता है। कहने का मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति है जो केवल अनुभव से ही सीखता है, वो सोचता है कि जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा तब तक मैं सीखूंगा नहीं। लेकिन यहां बताया गया है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर जान लेता है, उसके बाद में आदमी देखकर सीख लेता है, और तीसरे श्रेणी में वो व्यक्ति है जो अनुभव करके सीख लेता है, और एक चौथे श्रेणी का आदमी है सबसे अल्प बुद्धि वाला। और वो उसकी दशा क्या है? जो अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखता है। पकड़ा जाता है चोरी करने के बाद, उसकी पिटाई होती है, जेल में जाता है, जेल में दंड मिलता है, कई सालों तक जेल में रहता है, बाहर आता है, फिर से वही काम करता है, फिर से जेल में जाता है, ये चौथे श्रेणी का आदमी है। दो चार महीने पहले जब हम रेलगाड़ी में जा रहे थे, अखबार था सामने, अखबार में पढ़ रहे थे कि चेन्नई या मद्रास में एक चोर है, 26 बार जेल जा चुका है, 26 बार, और बड़े अच्छे, सबसे आदर्श कैदी है वो, कभी अंदर आके झगड़ा नहीं करेगा, बिल्कुल उसका व्यवहार आदर्श है, जेल के अंदर जितनी भी सेवाएं हैं वो सब करेगा, अन्यों के जो कैदी हैं, सहकैदी, उनकी भी सेवा करेगा, सब कुछ। तो कई बार ऐसे हुआ कि उसका व्यवहार इतना अच्छा हुआ कि उन जल्दी से छोड़ा गया उसको, लेकिन फिर से पहुंच जाता था चोरी करके 26 बार, और उसकी आयु इतनी ज्यादा भी नहीं थी। क्यों? चौथे श्रेणी में से सीखता नहीं है व्यक्ति। ये आदत जो है, ये बहुत पाप करने की आदत इतनी प्रबल होती है, ये संस्कार इतने तीव्रता से चित्त में बैठ जाते हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। और परीक्षित महाराज के श्लोक से हम इस बात की पुष्टि देखेंगे। प्रभुपाद जी एक कहानी बताया करते थे कि एक बार एक चोर था, उसने सोचा कि चलो बहुत चोरी कर ली जीवन में, बहुत पाप कर लिया, तो अब मुझे सुधरना चाहिए। तो कैसे सुधारा जा सकता है? तो मुझे थोड़े भक्तों के संग में जाना चाहिए, हमने सुना है कि भक्तों के संग में आने से बुरा आदमी भी सुधर जाता है, ठीक हो जाता है। तो सत्संग में आया तो वहां चर्चा चल रही थी कि कोई यात्रा में जा रहे हैं, वृंदावन यात्रा में सब लोग आ रहे हैं, तो सोचा चलो अपना भी नाम दे दिया, मैं भी परिक्रमा में जाऊंगा। तो जैसे लोग जा रहे थे, किसी एक दिन रात में धर्मशाला में रुके, और एक बड़ा कमरा था, सभी लोग वहां इस बड़े कमरे में सोए हुए थे, अपना अपना बोरी बिस्तर सामान सब साथ में रखा हुआ था। जैसे ही सभी लोग सो गए तो इस चोर के मन में इच्छा जागृत हुई कि अरे ये तो बहुत ही आकर्षक है, सबके सामान यहां पड़े हैं, सब लोग सो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, आदत से मजबूर। तो व्यक्ति सोच रहा था कि चलो कुछ उठा लूं, लेकिन फिर सोचा अरे नहीं नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा में आया हूं, ये तीर्थ स्थान है, भक्तों का संग है यहां पर, और मैं सुधरने के लिए आया हूं, तो मुझे चोरी तो नहीं करना चाहिए। तो खैर उसने चोरी नहीं की, लेकिन पुरानी आदत इतनी मजबूत प्रबल थी कि उसे कुछ तो करना था, इसलिए क्या किया, उसने एक की थैली उठाई दूसरे के पास रख दिया, दूसरे की थैली उठाई तीसरे के पास रख दिया, ऐसे सारे थैलियां जो है सबके सामान इधर उधर कर दिए। सुबह सब उठ गए और हल्ला मच गया, अरे, और झगड़ा हो गया सब, अरे तुमने मेरा बिस्तर क्यों लिया, अरे तुमने मेरा सामान क्यों लिया, झगड़े हो गए। फिर वो चोर कहने लगा, महोदय जरा क्षमा कीजिएगा, ये गलती आपकी नहीं है, मेरी है। तो उसने सारा इतिहास बताया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आदत से मजबूर था। तो उसी प्रकार से यहां दुनिया में जब लोग पाप करते हैं तो वशभूत होकर, विवश होकर करते हैं। तो जब तक हम अच्छे संग में आकर श्रवण नहीं करेंगे बार बार, तब तक हम ये पहली श्रेणी में पहुंच नहीं सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब सुना, इसलिए यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर जेल जाना ही ये प्रायश्चित है, तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ? व्यक्ति जेल में जाता है, फिर से आता है, फिर वही काम करता है, फिर जेल जाता है, जैसे वो आदमी 26 बार जेल गया, चौथे श्रेणी का आदमी। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्रायश्चित करना ये सही रास्ता है नरक लोक से बचने का, तो तुरंत इनकार कर दिया परीक्षित महाराज ने। ये दो श्लोक महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये सारे प्रायश्चित का विषय जो है, ये छठे स्कंद के पहले अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में पाया जाता है, और क्रमशः सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के संवाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक प्रायश्चित क्या है। तो तात्पर्य के इस भाग में चर्चा ये होने वाली है। सबसे पहले जो प्रायश्चित का मार्ग, जो कि धर्मशास्त्रों में बताया गया है कर्मकांड के अंतर्गत, उसकी भर्त्सना करते हैं परीक्षित महाराज। हाँ जी आगे पढ़िएगा।
उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है।
हाँ नहीं श्लोक पढ़िए ना, श्लोक तो पढ़ना चाहिए। ठीक है हम पढ़ लेते हैं श्लोक, आप पीछे पीछे पढ़िए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए। ठीक है। दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन अप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तं मतो अथो कतम क्वचिन्निवर्तते अभद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तं मतो पार्थम् मन्ये कुंजर शौचवत्। तो इन श्लोकों का अर्थ मैं जरा साधारण भाषा में संक्षिप्त में सुना देता हूं। दृष्ट श्रुताभ्याम देख के सुन के यत पापम जानन, कोई व्यक्ति सुनता है और देखता है कि ये काम पाप है, अच्छा नहीं है। आत्मनः अहितम, ये मेरे अहित के लिए है, मेरे लिए हितकारी नहीं है, हानिकारक है। जानन अपि, हालांकि वो जानता है इस बात को सुन के और देख के कि ये पाप है, ये मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी करोति भूयः, बारंबार उस कार्य को करता है, विवश विवश होकर करता है। प्रायश्चित्तम अथो कथम, फिर ऐसे प्रायश्चित करने से क्या लाभ। फिर आगे परीक्षित महाराज कहते हैं क्वचिन निवर्तते अभद्रात, कभी कभी क्वचिन कभी कभी निवर्तते मतलब रोक देता है, अभद्रात मतलब इन पाप कर्मों कामों को करना बंद कर देता है। क्वचित चरति तत् पुनः, और कभी कभी फिर से उन्हीं पाप कार्यों को कर देता है फिर से। तो प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम, तो ऐसा प्रायश्चित अपार्थ है, अपार्थ मतलब व्यर्थ, तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ। मन्ये कुंजर शौचवत, तो मैं मानता हूं कि ऐसा प्रायश्चित जो है ये एक हाथी के स्नान के बराबर है। तो हाथी के स्नान के बराबर क्यों, तो आइए आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं।
उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी नदी में भली भांति स्नान करता है, किंतु किनारे पर पहुंचते ही अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान का क्या महत्व हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक व्यवसायी हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ साथ यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके कीर्तन से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जाते हैं उनमें से एक अपराध है नामनो बलात् यस्य हि पाप वृद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप करना, कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से विमुक्त हो जाएंगे। जब ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है वे पुनः यह सोचकर पाप करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें पापों से क्षमा कर दिया जाएगा। परीक्षित महाराज ने जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म को कभी पुण्य कर्म से विनष्ट नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो यहां पर कर्मकांड में जो प्रायश्चित का मार्ग बतलाया गया है, इसकी भर्त्सना परीक्षित महाराज करते हुए कई उपमाएं भी देते हैं। तो पहले हम कितने उपमाएं हम सुन चुके हैं अभी तक इस तात्पर्य में, बताइए। सबसे पहले, इसके पहले चोर का उदाहरण, चोर की उपमा क्या है? हाँ, जैसे समझ लीजिए कि कोई हम पाप करते हैं और पाप का फल है नरक लोक की प्राप्ति करना, तो उस नरक लोक से बचने के लिए हम कोई प्रायश्चित का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि कोई चोर चोरी करता है और प्रायश्चित उसके लिए ये होता है कि वो जेल भेजा जाए, परंतु जेल से बाहर आने के बाद भी अगर वो चोरी करता रहे तो फिर क्या फायदा, क्या लाभ ऐसे तथा कथित प्रायश्चित का। तो ये चोर का उदाहरण, पहली उपमा ये है। दूसरी हाथी की, हाथी की उपमा क्या है, कोई समझाइए। क्या करने के बाद
नहाया, हमने अपने पापों को, हमने कोई पुण्य कर लिया, कर्मकांड किया, पापों से प्रायश्चित किया, हम फिर से वही पाप किया तो अपने आप को फिर से गंदा कर लिया।
ठीक है, बिल्कुल, ये हाथी का स्नान, कुंजर शौच। तीसरा उदाहरण कौन सा दिया गया है जी? नाम के बल पर पाप करना, हालांकि ये कर्मकांड का कार्य नहीं है, ये अपराध युक्त नाम है, फिर भी एक उदाहरण यहाँ श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है ये सोचकर कि चलो हरि नाम बहुत शक्तिशाली है, मेरे पापों को नष्ट कर सकता है, तो मैं पाप करूंगा, हरि नाम लूंगा, फिर से पाप करूंगा, फिर हरि नाम लूंगा, तो ये एक नाम अपराध है और ऐसा नाम अपराधी कभी कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे और कौन सा उदाहरण देते हैं? ईसाई का क्या उदाहरण है ये, कौन बताए? न और कोई बताए जो? हाँ माता जी बताए। प्रायश्चित मतलब क्या करते हैं ईसाई धर्म में लोग? हाँ, ईसाई धर्म में ऐसे पद्धति है कि गिरजाघर में जाते हैं पादरी के सामने शनिवार को या रविवार को, और पादरी के सामने स्वीकार करते हैं कि यहाँ पिछले हफ्ते में मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, और पादरी कहता है कि यीशु क्राइस्ट की कृपा से तुम अभी तुमको क्षमा हो गया, चलो अभी आइंदा नहीं करना। फिर अगले हफ्ते जाके फिर से वही पाप करता है, फिर आए रविवार, शनिवार रविवार आया, फिर से पादरी के सामने हाजिर हो गए, तो फिर क्या लाभ? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगला वाक्य पढ़िए, केवल एक वाक्य।
अतः असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना मृत को जागृत करना है।
हाँ, लेकिन ये कैसे है, ये थोड़ी देर बाद में आएगा, लेकिन तुरंत सुखदेव गोस्वामी इस बात पर नहीं आते हैं। जब परीक्षित महाराज इस प्रकार से कर्मकांड के प्रायश्चित पथ को की भर्त्सना करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत उस बात को मान लेते हैं कि हाँ तुमने जो कहा वो सही कहा है। और वास्तव में ज्ञान को, वेदांत को प्राप्त करना, सही ज्ञान को प्राप्त करना यही मार्ग है। प्रायश्चित्तम विमर्शनम, विमर्शनम मतलब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, शरीर और आत्मा का अंतर है, वेदांत का ज्ञान, इसको प्राप्त करने से हम वास्तव में प्रायश्चित कर पाएंगे। हाँ, तो आगे पढ़िए।
असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि अपने मूल ज्ञान को जागृत करने के लिए कतिपय सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचार्य, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शौच तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके तो वह योग द्वारा मन को वश में करने की समस्त विधियों को मात्र कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना अनुसरण करके तथा किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर पछाड़ सकता है। श्री रघु गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं।
ठीक है, तो अभी यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कर्मकांड की बात की थी उन्होंने। जब कर्मकांड को नकार दिया परीक्षित महाराज ने तो उन्होंने ज्ञान कांड की बात कर दी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं फिर कहा कि वास्तव में हालांकि वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करने से प्रायश्चित तो थोड़ा बहुत हो जाता है, प्रायश्चितम विमर्शनम, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से समर्थ नहीं है क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति अभी भी नष्ट नहीं हो जाती है। और परीक्षित महाराज वहां कहते, सुखदेव जी कहते हैं, क्षिपन्ति अघम महतपि वेणु गुल्मम इवानलः। जो वेणु गुल्म मतलब लताएं, जो वेणु या बांस के पेड़ के नीचे होती हैं, कभी कभी जंगल में आग लग जाता है तो जो ऊपर के लताएं पन्ने वगैरह होते हैं वो जल जाते हैं, परंतु जड़ जले हुए नहीं होते हैं। इसलिए सही समय पर ये जड़ से फिर से वो लताएं या पन्ने वगैरह उत्पन्न होते हैं। तो वेणु गुल्मन गुल्मम इव अनलह। अनल मतलब अग्नि। अग्नि से जब जंगल में आग होती है तो ये सब ऊपरी चीजें जल जाते हैं लेकिन नीचे जड़ जला नहीं हुआ होता है। इसलिए फिर से वो अपने पन्ने आदि लताओं को उत्पन्न करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पाप होते हैं उनके बीज बहुत गहराई से हृदय में बैठे हुए होते हैं, चित्त में, और वेदांत का पथ इतना शक्तिशाली नहीं है कि इस बीज को भी वो नष्ट कर सके। और यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे एक स्वच्छता का नियमित विधि का पालन करने से, सही प्रकार के आहार को स्वीकार करने से व्यक्ति रोग से बच सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक प्रदूषण से बचने के लिए, चित्त के प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या की क्या परिभाषा की है प्रभुपाद जी ने? ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और ऐसे तपस्या में क्या है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, मन और इंद्रियों को वश में करना है, दान देना है, सत्यवान होना है, स्वच्छता का पालन करना है, योगासन आदि का पालन करना है, तो ये सब आ जाते हैं। परंतु चाहे वो ज्ञान योग का मार्ग हो, अष्टांग योग का मार्ग हो, जितने भी मार्ग हैं वो असमर्थ हैं पूरी तरह से कर्म के बीज को नष्ट करने के लिए। और फिर से सही समय पर ये बीज फिर से खिल जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और फिर से वो फल आ जाएंगे। प्रभुपाद कहा करते थे, उदाहरण दिया करते थे खटमल का। कभी कभी खटिया में खटमल होते हैं, और हम लोग जब विद्यार्थी थे कभी कभी हम लोग रहते थे तो हम लोग बिस्तर का बिस्तर जला डालते थे, क्योंकि खटमल न जाने कहां से आ जाते थे, तरह तरह के लोग आके बैठते थे, तो लोहे का पलंग होता था तो बाहर ले जाके जलाना पड़ता था उसको, मतलब आग से, ताकि जितने भी खटमल ऐसे विद्यार्थी लोग किया करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि बीच में कोने में कहीं कोई अंडा जो है उसका वो रह जाता था, और फिर से सही मौसम जब हो जाता था उपयुक्त कोई ऋतु में, वो फिर से अंडा जो अंडे में से वो खटमल फिर से आ जाता था, काटना शुरू कर देता था। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्मकांड आदि इन पथों को स्वीकार करके भले व्यक्ति को लगे कि चलो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पापों के बीज जो हैं वो अभी तक चित्त के कोने कोने में कहीं तो अटके हुए हैं, और सही वातावरण पाके सही समय पर वो फिर से अंकुरित हो जाएंगे, और फिर से वो पाप करने की प्रवृत्ति वो प्रकट हो जाएगी, व्यक्ति पुनः पाप करेगा, उसका पतन हो जाएगा। और जितना भी हम प्रायश्चित करें ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में, अष्टांग योग मार्ग में, ये पर्याप्त नहीं होगा। पर इसलिए सुखदेव गोस्वामी और एक भी उदाहरण देते हैं, न निष्पुणन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगाह। सुरा कुंभम की जो शराब का पात्र होता है, इसमें शराब भरा होता है, शराब को खाली कर दीजिए लेकिन थोड़ा कुछ शराब तो बच जाएगा ना उस पात्र में, फिर उस शराब को, उस पात्र को धोइए पानी से। अपगाह, आपगाह मतलब अनेक, आप मतलब पानी, गाह मतलब चलने वाला, जो नदियां हैं अनेक नदियों में आप धो लीजिए, फिर भी जो शराब का जो प्रभाव है वो नहीं जाएगा। तो सुखदेव जी कह रहे हैं जिस प्रकार से शराब का पात्र जो है वो दूषित ही दूषित रहेगा हमेशा, आप कितने भी नदियों में उसको साफ कीजिए फिर भी वो प्रभाव नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये कर्मकांड, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन मार्गों को स्वीकार करके प्रायश्चित पूरी तरह से नहीं हो सकता, पाप करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। तो फिर कैसे नष्ट हो सकती है? फिर 15वें श्लोक में ही उस प्रसिद्ध श्लोक को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती काचनेन निहारम इव भास्कर। इसमें वो कहते हैं केचित केवलया भक्त्या, केवला भक्ति जो शुद्ध भक्ति है वही वासुदेव परायणा, जो भगवान वासुदेव के चरण कमलों में की जाती है, अघम धुन्वंती काचनेन, अघम मतलब पाप, धुनवंती मतलब नष्ट करना, काज स्नेह मतलब पूरी तरह से। तो भगवान की अहितुकी भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से हमारे सारे पाप जड़ सहित निकल जाएंगे। भक्ति मार्ग इतना शक्तिशाली है कि इन पापों को जड़ से उखाड़ देते हैं। निहारम इव भास्कर, निहार मतलब कोहरा। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के पहले से ही जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं तो वो कोहरे को नष्ट कर देती हैं। पूरी तरह से सूर्य को उदित होने की आवश्यकता नहीं है, सूर्योदय के पहले से ही लेश मात्र थोड़े बहुत किरण आ भी जाए तो कोहरा नष्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भक्ति के आभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे संभव है? यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करने के लिए हमारे सौभाग्य होता है तो फिर ये संभव है। यथा कृष्ण अर्पितः प्राणः तत्पुरुष निषेवया, कृष्ण अर्पित प्राण, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने आप को समर्पित किया है श्री कृष्ण के चरणों में, अपने प्राण को ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित किया है, ऐसे व्यक्ति निषेवया, इसकी सेवा करने से हमें शुद्ध भक्ति मिल सकती है। और ऐसे शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से ये सबसे वास्तविक प्रायश्चित है, क्योंकि न केवल हम पाप के फल से मुक्त हो जाएंगे लेकिन पाप की प्रवृत्ति भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए तो इस सारे भाग का तात्पर्य के इस भाग का सार यही है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च और परिपूर्ण प्रायश्चित है, जिसमें न केवल पापों के फल नष्ट हो जाते हैं बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है और मन और इंद्रियां दोनों वश में हो जाती हैं। हाँ, तो इसका सार अभी जो हमने चर्चा किया वो एक चार्ट के ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, प्रायश्चित अभी जो 15-20 मिनट में चर्चा हुई थी इसका सार यहां है। तो प्रायश्चित के तीन प्रकार की चर्चा यहां पर हुई है। एक है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञानकांड और तीसरा है भक्ति, भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति। तो कर्मकांड के उदाहरण दिए हुए हैं, चोर का उदाहरण, हाथी का उदाहरण और चर्च में गिरजाघर में जाके पादरी के सामने पापों को स्वीकार करना, ये उदाहरण कर्मकांड के लिए दिए गए हैं, उपमाएं हैं। ज्ञानकांड के लिए उदाहरण है स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करना। और ये दूसरे और तीसरे उदाहरण ये तो यहां इस तात्पर्य में नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज या सुखदेव महाराज इन दो उपमाओं को बताते हैं। एक है वेणु गुल्म और दूसरा शराब का पात्र। और भक्ति जो कि परिपूर्ण और आदर्श प्रायश्चित की प्रक्रिया है, उसके लिए उदाहरण है सूर्य और कोहरा। वेणु मतलब बांस, बांस का पेड़। गुल्म जब गुल्म मतलब लताएं वगैरह पन्ने होते हैं ना, तो वो कभी कभी जंगल में आग लग जाता है तो जमीन पे जो भी कुछ है घास वगैरह जल जाता है, तो ये पन्ने जल जाते हैं, लताएं जल जाती हैं, लेकिन जड़ नहीं जलते। जड़ या मूल जो है वो वैसे के वैसे रह जाते हैं और सही समय पर फिर से उग जाते हैं, वो पन्ने वगैरह आ जाते हैं। हाँ, चर्च, गिरजाघर। ये चार्ट देने का उद्देश्य ये है कि सारा सार जो है एक पन्ने में आ जाता है, याद रखने के लिए आसान होता है, समझने के लिए आसान होता है। जब भी आप प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते हैं इसी प्रकार से आप करने का प्रयास कीजिए, ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपकी समझ मजबूत हो जाएगी, आप सारे उस अध्याय का या उस पन्ने का निचोड़ आप निकाल पाएंगे ऐसे करके। हाँ, वो नाम नो बलात् पाप, हाँ वो नहीं दिया है। हाँ, क्योंकि वास्तव में वो कर्मकांड के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक उदाहरण था कि किस प्रकार से हम गलत इस्तेमाल करते हैं। हरि नाम से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हम केवल पाप करने के लिए इसे, पाप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ से पाप करते हैं। वेणु गुल्म और शराब का पात्र, ये ज्ञान कांड और योग कांड के अंतर्गत क्यों बतला गया? आप में से कोई समझाइए, इसकी चर्चा की थी, कौन समझाएंगे? तो आगे तो ज्ञान कांड से भी जड़ से यारे जो हमारे पाप है वो उखड़ नहीं जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति अभी तक बनी रहती है और अनुकूल वातावरण पाके वो फिर से फलित हो जाते हैं। ठीक है। कर्मकांड में तो है ही, परंतु ज्ञान कांड में भी ऐसे है। सुखदेव ज्ञान, ज्ञान का पथ जो है वो जड़ से इन पापों को उखाड़ने में असमर्थ है। ये पथ की ही कमी है, ये पथ में उतनी शक्ति नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारे पापों को जड़ से उखाड़ दे। ये केवल भक्ति कर सकती
है। ज्ञान के द्वारा वो लादा जाता है, भक्ति के द्वारा वो अपने आप
स्वतः करता है। हाँ, और एक उदाहरण दिया जा सकता है, अन्य जगह भी ये पाया जाता है। वैसे देखिए ये सबके लिए लागू होता है, कर्मकांड के लिए भी होता है, लेकिन ज्ञान कांड कर्मकांड से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान कांड में भी अगर ऐसा है तो निश्चित ही कर्मकांड के लिए भी है। आप समझ रहे हैं, कर्मकांड के लिए तो है ही है, परंतु ज्ञान कांड में भी पूरी तरह से प्रायश्चित नहीं हो पाता है, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो जाती है। कहने का मतलब है कि देखिए, पहले तो उदाहरण दे दिया हाथी का स्नान कर्मकांड के लिए, ये तो है ही, समझना बहुत आसान है। लेकिन जब ज्ञान कांड में आ जाते हैं तो ज्ञान से काफी कुछ शुद्धिकरण होता है। व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है और उसका हृदय प्राय शुद्ध हो जाता है, और भी पूरी तरह से नहीं होता। जैसे हल्का सा कुछ न कुछ रह जाता है, जैसे ये शराब का पात्र समझ लीजिए, धो लीजिए, अब काफी कुछ हो जाता है ना साफ, फिर भी लेश मात्र कुछ रह जाता है। लेकिन हाथी का स्नान ज्यादा उदाहरण स्थूल है, ज्यादा स्थूल है। जैसे हाथी फिर से मिट्टी डाल देता है अपने शरीर पे तो बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है, लेकिन शराब का पात्र अब बहुत ज्यादा धोएंगे तो इतना पता नहीं चलता, थोड़ा कुछ सूक्ष्म है। इसलिए उदाहरण थोड़े सूक्ष्म है, और हाथी का उदाहरण जो स्नान का उदाहरण थोड़ा स्थूल है। और नहीं, और ये जल्दबाजी में मैं किया, और कोहरा। हाँ, तो ये बिल्कुल भक्ति योग की बात हो रही है, समृद्ध अर्च ही, कि ये भक्ति क्या है, उस अग्नि के बराबर है जो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देता है। जैसे ईंधन जब डाला जाता है अग्नि में, सब भस्म हो जाता है, तो जितने भी हमारे कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं भक्ति की अग्नि में। प्रश्न ये है कि यदि ये सूर्य और कोहरे का उदाहरण लिया जाए कि भक्ति के आभास मात्र से अगर सारे पाप जड़ सहित निकल जाते हैं, तो फिर भक्ति में आने के बाद कभी कभी ऐसे क्यों देखा जाता है कि भक्त पाप करते हैं? इसका उत्तर ये है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी माधुर्य कादम्बिनी नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि इन समस्त पापों का निवारण क्रमशः होता है। कई ऐसे बीज हैं या पाप हैं जो काफी समय बाद जाते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा सख्ती से हृदय में चित्त में बैठे हुए हैं वो पाप इतने आसानी से नहीं जाते। इनकी श्रृंखला माधुरी कादम्बिनी में दी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में, कई ऐसे पाप हैं जो भाव भक्ति तक रह जाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, वैदी साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति, भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति की अवस्था में सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भाव भक्ति के स्तर में भी थोड़ा कुछ रह जाता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी रहता है। हालांकि भाव भक्ति की अवस्था में व्यक्ति भगवान को अपने आंखों के सामने देखने के लिए योग्य हो जाता है, साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है उसे, कम से कम योग्यता है उसकी देखने के लिए, अष्ट सात्विक विकार उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं, फिर भी थोड़ा कुछ लेश मात्र कुछ रह जाता है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, लेकिन प्रेमा भक्ति की अवस्था में सब नष्ट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम भी ये कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आप भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ेंगे, ये विषय आएगा आपका, इसके ऊपर पूरा एक अध्याय है, प्रेमा भक्ति के ऊपर, भाव भक्ति के ऊपर अध्याय है, रागानुगा भक्ति के ऊपर दो अध्याय हैं। ऐसे भक्ति के जो अलग अलग स्तर हैं उनकी चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार में श्रील रूप गोस्वामी करते हैं, ठीक है। तो जैसे 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 समझ लीजिए, ईंधन का ही ले लीजिए आप, अग्नि में आप कोई ईंधन डालते हैं, कुछ जला रहे हैं आप, हर चीज एक साथ में नहीं जलती है। आप थोड़े आप घास डाल देते हैं, कागज डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं और कुछ डाल देते हैं, तो तरह तरह के वस्तुएं हैं अग्नि के अंदर, क्या एक साथ में सब जल जाएंगे? कागज पहले जलेगा या लकड़ी पहले जल जाएगी? कागज। लकड़ी भी जलेगी लेकिन अपने समय में जलेगी, जब और प्रज्वलित रूप से अग्नि जलेगी तब लकड़ी भी जल जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी भक्ति भी उतनी तीव्र होनी चाहिए, भक्ति की अग्नि भी उतनी तीव्र होनी चाहिए, तब जाके ये जल्दी से जल्दी सब जल जाएंगे। ये सारी श्रृंखला बताते हैं वो, किस प्रकार के पाप कब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस समय हमारे लिए बस इतना पर्याप्त है कि एक क्रम है और क्रम से वो सब नष्ट होते रहते। किस प्रकार के पाप कब नष्ट होते हैं इसका वर्णन भी वो करते हैं, ठीक है। तो ये अवश्य है कि हमारी भक्ति की अग्नि बहुत तीव्र हो, अन्यथा अनेक जन्म लग जाएंगे इसके लिए, अनेक जन्म लग सकते हैं, धीरे 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 करते हुए अनेक जन्म लग सकते हैं। वैसे समय बीत रहा है लेकिन अकबर बीरबल की एक कहानी याद आ रही है, बताएं क्या हुआ। यह है कि एक बार अकबर ने एक प्रतियोगिता की कि हाँ यहां अब ठंडी का समय है, तो जो व्यक्ति यहां जमुना के जल में खड़ा हो सकता है जाड़े के मौसम में अपने गर्दन तक रात भर, तो मैं उसे पुरस्कार दूंगा। तो एक कोई व्यक्ति आया, उसने प्रयास किया, एक घंटे के बाद बाहर निकल आया, सहन नहीं कर पाया, इतनी ठंडी थी, पानी भी बहुत ठंड। ऐसे अनेक लोग आए, बेचारे असफल होकर चले गए। अंततः एक व्यक्ति आया, वो सफल हो गया, रात भर वहां खड़ा रहा ठंडे पानी में जाड़े के मौसम में। और जब बाहर आया तो अकबर के पास आया कि बादशाह पुरस्कार दीजिए। तो वहां कोई उनका टेढ़ा मंत्री कोई था, उसने कहा ये हजूर इसे उसने चीटिंग किया है, धोखा किया है। क्या किया चीटिंग? वहां दूर जो एक वहां दिया था दीप, वो दीप की ओर देख रहा था, दीप से उसको उष्णता प्राप्त हुई, इसलिए इसने सही ढंग से नहीं किया, इसलिए उसे पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। तो अकबर ने कहा ठीक कह रहे हो, तो नहीं मिलेगा तुम्हें पुरस्कार। तो बेचारा निराश हो गया, बीरबल के पास गया। तो बीरबल ने सोचा ये तो अन्याय हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। तो उसने कहा तुम बेचैन नहीं हो ना, मैं राजा को समझाऊंगा सही समय पर। तो बीरबल ने एक दिन बादशाह अकबर को अपने घर बुलाया प्रसाद के लिए, भोजन के लिए, कहा कि ठीक 12 बजे बादशाह जी आप आ जाइए, आपको बढ़िया दावत खिलाएंगे। तो बीरबल, अकबर पहुंच गए बीरबल के घर में 12 बजे, तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, उनको बिठाया, इधर उधर की बातें चलती रही और आधा घंटा बीत गया, एक घंटा बीत गया। तो फिर अकबर ने पूछा, अरे बीरबल कुछ भोजन नहीं दिख रहा है, क्या बात है, कुछ समय तो बीत रहा है ना। हाँ अभी अभी तैयार हो रहा बादशाह, अभी अभी आ बस। ठीक है, तो बात करते, 1 बज गया 1:15 बज गया। अरे बीरबल क्या बात है, अभी तक बन रहा है क्या प्रसाद? हाँ अभी अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। 2 बज गए 2:30 बज गए 3। अरे बीरबल दिखाओ क्या क्या पकड़ा, मुझे देखना है। तो चले गए रसोई घर में। रसोई घर में क्या था, जो नीचे थोड़े बहुत लकड़ियां थी, चूल्हा थोड़ा कुछ बनाया हुआ था, अग्नि बहुत हल्का था, और ऊपर छत से टंगा हुआ था वो मटका था जिसमें चावल था। तो बादशाह देखिए अभी चावल पक रहा है। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ऐसे कोई चावल पकाया जाता है क्या? नहीं, अगर कोई व्यक्ति यमुना में खड़ा है, कहीं मीलों दूर कोई दीप की अग्नि लेकर वहां उष्णता को प्राप्त करके खड़ा हो सकता है, तो ये क्यों नहीं पक सकता है ना। तो ये बात है, उसी प्रकार से ये हमारी भक्ति ये अग्नि है। और लेकिन बीरबल की तरह करेंगे वैसे तो फिर वो जलेगा नहीं, पाप रह जाएंगे। वैसे हल्का से हल्की सी अग्नि बस तो उसे काम नहीं चलेगा। हमारी अग्नि बहुत तीव्र होनी चाहिए, इतनी तीव्र होनी चाहिए कि ये राख बन के हो जाएगा, सारा ईंधन जो भी है सब खत्म हो जाएगा, या चावल है वो पूरी तरह से पक जाएगा। तात्पर्य समझ रहे हैं ना, कि भक्ति की अग्नि उतनी प्रज्वलित होनी चाहिए, हमारी तीव्र होनी चाहिए, फिर ये सब हो जाएगा। यथाग्नि सुसमृद्धार्चि ही, यही बात है। गृहस्थाश्रम में भी आप तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं, क्यों नहीं, अवश्य कर सकते हैं अपने परिस्थिति में। हाँ गृहस्थाश्रम में थोड़े बहुत बंधन होते हैं अवश्य, फिर भी कितने महान भक्त हमारे इतिहास में गृहस्थ हुए हैं, वो भक्ति करते रहे। तो आश्रम हमारे लिए कोई बंधन नहीं है एक दृष्टि से देखा जाए तो। तीव्रता से भक्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो हृदय की बात होती है, केवल हमारे बाह्य स्थिति की बात नहीं होती है। हाँ तो चले, हमें आगे भी बढ़ना है ना, नहीं तो अकबर बीरबल में रह जाएंगे तो फिर आगे हाँ हाँ फिर वो पकेगा नहीं फिर, है ना। अच्छा तो ये प्रायश्चित ये भाग अब समाप्त हो गया, अब हम चर्चा करेंगे षड्वेगम। तो इस प्रायश्चित के भाग का अंत या निष्कर्ष ये है कि कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च और परिपूर्ण प्रायश्चित है, जिससे कि पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है और मन और इंद्रियां दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भक्ति करने से किस प्रकार से मन और इंद्रियां वश में आती हैं। अब ये तात्पर्य के दूसरे भाग में बताया गया है कि ये षड्वेग हैं क्या, और भक्ति करने से इन षड वेगों को नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है। हाँ अब और कौन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे? हाँ हाँ सर्वप्रथम
उसी तरह हम जीव होने के कारण चाहे हम कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है, वाणी के वेग के संयम की यही महत्ता है।
कितना सुंदर प्रभुपाद की वाणी, कितनी शक्तिशाली है और कितनी मीठी है। हालांकि कठोर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन कितने मीठे ढंग से बोल रहे हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे पढ़ के प्रभावित नहीं होगा। कितनी सुंदर व्याख्या है। और ये सही है वास्तव में, बस अवसर चाहिए बद्ध जीव को पक 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 शुरू करने के लिए। लोगों को आप कहीं उपवास करें, उपवास कर सकते हैं, कहिए मौन रखो संभव नहीं। बोलने की प्रवृत्ति जिह्वा वेग, ये वाचो वेग, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जहां भी आप बाहर जाएंगे भक्तों के बीच में भी आप देखेंगे, दो भक्त आ जाते हैं बस बात करना शुरू। इसलिए अवधूत ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है ना, वो अकेले जाते थे, वो जानते थे कि दो होंगी तो बात होगी। वो माता जी वो चूड़ी पहनती थी, एक पहनती थी, दो है मतलब खंड 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 आवाज आएगा, इसलिए एक पहनो, अकेले रहो, दो रहेंगे तो बातचीत प्रजल्प शुरू हो जाता है। ये कहानी हम अक्सर बताते हैं। एक बार हम रेलगाड़ी में गए थे लंबे सफर में। देखिए सबके कर्म ऐसे ऐसे होते हैं ना, सही यात्री भी वैसे अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं ना। तो हमारे सामने कोई तीन माता जी थे, गुजराती भाषा में बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि ये कोई विश्व रिकॉर्ड होगा कि जब से यात्रा शुरू हुई तब से अंत तक ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इतना बोल रहे थे कि बस हमारी सहन, हमारी परीक्षा तो हो ही रही थी लेकिन हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई। हम बहुत अपने आप को वश में करने का प्रयास कर रहे थे, छह घंटों के बाद सहन नहीं हुआ। फिर उनसे हाथ जोड़ के हमने कह दिया, माता जी कृपया केवल पांच मिनट आप रुक, केवल पांच मिनट रुकिए, पांच मिनट मुझे आपकी सारे फैमिली का इतिहास, परिवार के इतिहास, आपके परिवार के पॉलिटिक्स सब मुझे पता चल गया, किसको क्या कौन क्या है सब पता चल गया। यहां सामने किताब लेके बैठे हैं, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, जप नहीं कर पा रहे हैं, पर मानना चाहिए कि इनकी शक्ति कितनी है कि लगातार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हम लोग को भी एक घंटा प्रवचन देते हैं थक जाते हैं बाद में, और ये लोग छह घंटे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई और इतना उत्साह और शक्ति प्रेरणा इतनी मिलती है उनको, और तरह तरह के विषय मिल जाते हैं, कोई विषय उनकी कमी नहीं है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणम संति सहस्रशः, कि हजारों विषय रहते हैं लोगों को चर्चा करने के लिए, तरह तरह के विषय, एक विषय से दूसरा, दूसरा विषय से तीसरा। और कोई व्यक्ति बता रहे थे, हम जब लंदन गए थे वो कह रहे थे कि लंदन में ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अमीर है, मतलब वो उस सर्कल में घूमते हैं जहां इंग्लैंड के भी सबसे अमीर लोग घूमते हैं। और वो कह रहे थे हम इन लोगों के बीच में घूमते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये लोग इतने बड़े बड़े लोग, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, केवल दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं। जो नहीं आया है ना उस दिन, जो व्यक्ति उनके ही सर्कल में जो नहीं आया उसके बारे में चर्चा करते रहो, और दो घंटे तीन घंटे बस चर्चा करते रहो उसके बारे में, उसकी निंदा करो, उसकी ये करो वो करो। और वो हर एक व्यक्ति जानता है जब मैं नहीं आऊंगा मेरे बारे में चर्चा चलती रहेगी। तो चाहे कितने भी अमीर हो, अच्छे तथाकथित अच्छे घर के लोग हों, बड़े बड़े लोग हों, उद्योगपति हों, लॉर्ड, इंग्लैंड के लॉर्ड हों, फिर भी प्रवृत्ति वही है, बक पक 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 पक। बहुत खतरनाक है ये प्रवृत्ति, बोलने की प्रवृत्ति, वाचो वेगम बहुत ही प्रबल है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर कृत्रिम रूप से हम केवल रोकने का प्रयास करेंगे, मौन व्रत धारण करेंगे, तो वो भी असफल होगा, जैसे प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं। ये मौन व्रत से कुछ नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति को कुछ रस चाहिए, मौन में कुछ रस प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहां उपमा दे रहे हैं प्रभुपाद जी एक मेंढक की। मेंढक टर्राता है, और वो सोचता है कि मैं कितनी अच्छी मधुर गीत गा रहा हूं, लेकिन वो गीत क्या है, केवल सांप को आमंत्रित करता है और सांप सोचता है हा हा बहुत अच्छा, आज का संडे फीस्ट हो गया, और इस मेंढक को खा लेता है। वैसे श्रीमद् भागवत में काल की तुलना एक सांप से भी की गई है, काल सर्प। तो उसी प्रकार से हम लोग इस दुनिया में रहते हुए बक 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 करते रहते हैं, प्रजल्प करते हैं, भौतिक विषयों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को नीचे खींचना, इन्हीं विषयों में हमारा मन रमण करता है, बातें करते रहते हैं, तो काल सर्प आके हमें निगल लेता है। तो ऐसे वचनों से, ऐसे बातों से हम केवल काल सर्प को और निकट बुला रहे हैं, केवल मृत्यु की ओर हम लोग आगे जा रहे हैं बस, और कोई लाभ नहीं होता है। दूसरी ओर प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि वाचो वेग, हमारे इस बोलने के वेग को नियंत्रण में अगर नियंत्रित करना है तो केवल कृष्ण कथा से हो सकता है, मौन से नहीं हो सकता। तो बोलने की प्रवृत्ति हमें कृष्ण में केंद्रित करनी चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में बोलते रहना चाहिए, फिर काल सर्प हमें पकड़ नहीं पाएगा। आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन स्तम च यनसौ तस्यत यत क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक वार्ता, जब भगवान श्री कृष्ण जो कि उत्तम श्लोक है, इनकी वार्ता में हमारा समय हम बिताते जाएंगे तो सूर्योदय और सूर्यास्त हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं रहेंगी। अन्यथा जो केवल प्रजल्प करते हैं उनके लिए आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तम च यनसो, हर एक सूर्योदय के बाद पे जब सूर्यास्त होता है ऐसा व्यक्ति मृत्यु के एक दिन और करीब पहुंच जाता है, लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्त कृष्ण कथा में अपना समय बिताता है तो हर एक दिन उसे भगवान के धाम के करीब ले जाता है। भक्त के लिए मृत्यु जो है ये भगवान के धाम के लिए एक द्वार हो जाता है, मृत्यु ये दुर्घटना नहीं होती है भक्त के लिए, बल्कि एक स्वर्ण द्वार होता है प्रवेश करने के लिए भगवान के धाम में। लेकिन भौतिक व्याधि व्यक्ति के लिए मृत्यु उसकी सारी योजनाओं का नाश है, उसके सपनों का भंग होना है। तो इसलिए हमारा समय हमें कृष्ण कथा में ही बिताना चाहिए, भक्तों के बीच में भी हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं चलो हम भक्तों के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, भक्ति मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त, तो हम भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी भक्ति ही है, ये कृष्ण कथा है। तो दूसरे की निंदा करना, दूसरा कुछ करना, ये हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। कृपया घुमाएंगे इस पन्ने को। तो इस वाचो वेग का उदाहरण या सार इस चार्ट में दिया हुआ है। वाणी, असंयमित वाणी क्या है, भौतिक बातें, और उदाहरण क्या है, मेंढक और सांप। संयमित वाणी क्या है, मौन, ये जैसे मायावादी लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये वाणी को संयमित नहीं कर सकता है। कृष्ण कथा जो कि केवल भक्त करते हैं, ये वास्तव में हमारे वाणी का वास्तविक संयम है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे मनोवेगम, मन।
उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। इसी प्रकार
यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विभिन्न होने की पूर्ण संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विकारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं। मन में शून्य की सृष्टि करना कृत्रिम बुद्धि है, यह शून्य रह नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण कथा का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहजी प्रश्न हो जाएगा। इसी प्रकार
नहीं, ठीक है, तो ये है मनोवेग, मन सह वेगम। तो वाचो वेगम की तरह ही मन के वेग भी बहुत तीव्र होते हैं, और मन को शून्य नहीं किया जा सकता। शून्य कि विचारहीन हो जाओ, ऐसे कई दार्शनिक हैं जो कहते हैं अगर आपको मन को नियंत्रित करना है तो आपको विचारहीन होना चाहिए, परंतु विचारहीन होना यह संभव नहीं है। फिर आदमी सोचने लगता है अब मैं विचारहीन हो गया हूं, ये विचार ही तो विचार कर रहा है कि मैं विचारहीन हो गया हूं, तो कैसे संभव है? विचारहीन होना संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं जीव पत्थर नहीं है, सोचना क्रियाशील होना जीव का स्वभाव है। सोचना तो पड़ेगा हमें, विचारहीन नहीं हो सकते। या तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे या तो माया के बारे में, कोई बीच रास्ता नहीं है। या तो हम सूरज के रोशनी में हैं या तो छाया में या अंधकार में हैं, बीच का रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण सूर्य समा, माया होय अंधकार। तो हमारा मन कृष्ण में केंद्रित करना चाहिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी न किसी प्रकार से मन को कृष्ण में केंद्रित करना चाहिए। और यह भी सकारात्मक विधि है हमारे मन को वश करने के लिए। मन को शून्य करना, जैसे वाणी को नियंत्रित करने के लिए मौन व्रत रखना, उसी प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करने के लिए विचारहीन होने का प्रयास करना, ये सब नकारात्मक विधि है जो असफल ही रहेंगे। परंतु सकारात्मक विधि है कृष्ण में अपने मन को समा देना, स्मरण करना भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, घुमाएंगे आप। मन सह वेगम, तो मन या तो माया या अंधकार में मग्न हो सकता है, या तो कृष्ण जो कि सूर्य के समान है उसमें मग्न हो सकता है। और माया में मग्न होना, इसके दो प्रकार हो सकते हैं, या तो भौतिक विचार हो या शून्य की अवस्था प्राप्त करने का प्रयास हो। लेकिन दोनों दृष्टि से देखा जाए तो मन अनियंत्रित रहता है, लेकिन कृष्ण में मन को केंद्रित करने से मन नियंत्रित हो जाता है। शून्य से मतलब मन को खाली करना, विचारहीन करना, मन को खाली कर देना, कोई विचार नहीं रखना मन में। या तो भौतिक बातें, भौतिक विचार, मन में भौतिक चीजों के बारे में सोचना, या तो मन को खाली कर देना, मन को शून्य बनाना, मन में कोई विचार नहीं रखना, यह भी माया का ही एक रूप है। क्योंकि जहां कृष्ण नहीं है वहां माया है, भले वो शून्य क्यों न हो या भौतिक विचार क्यों न हो। ये मौन व्रत रखना और मन को विचारहीन करना, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई संस्थाएं भी हैं, कई मार्ग हैं जो ऐसे पथ का अनुशीलन करते हैं। नहीं, मौन व्रत तो वो वाणी के लिए हो गया, यहां पे मन को शून्य करना, विचारहीन करना, ये मन सवेगम में आता है। ध्यान आदि के कृत्रिम रूप कितने सारे बनाए हैं लोगों ने। अनेक वर्ष पूर्व हम एक जगह गए थे, किसी दूसरे काम से एक संस्था में गए थे, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है दक्षिण भारत में। तो किसी दूसरे काम से हम वहां गए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ध्यान मंदिर बनाया है। तो हमारे साथ जो भक्त थे उन्होंने कहा चलो जाके देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं, इनका ध्यान कैसे होता है, चलो जाकर देखते हैं। तो गए तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अब जपमाला अंदर नहीं ले जा सकते। अरे ये क्यों, जपमाला अंदर नहीं तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अंदर ये शांति मंदिर है, मौन मौन अंदर आपको मौन रखना होगा, मन को शून्य बनाना होगा, विचारहीन होना चाहिए। वहां केवल आप बीच में एक दीप देखेंगे जो घूम रहा है, स्फटिक का कुछ है वो, और वो प्रकाश घूम रहा होगा, केवल उस पर ध्यान आपको केंद्रित करना है। हम सोच चलो भाई देखते हैं क्या ध्यान, इतना पढ़ा है हमने जाके देख तो लेते हैं, प्रभुपाद जी इतनी निंदा करते हैं, इतनी भर्त्सना करते हैं इन लोगों की। तो गए जपमाला, एक भक्त बेचारे रह गए बाहर, तो हमने जपमाला रख ली, अंदर चले गए। लंबी लाइन थी, कतार लंबी होनी थी, उसके बाद में पहुंच गए अंदर। सारा एयर कंडीशन कमरा था और अंदर कारपेट इतना मोटा कि बस पैर अंदर जा रहे थे, और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। दो मिनट तो बस खड़े रहना पड़ा कि भाई यहां सब लोग बैठे हैं, किसी के ऊपर टकरा कर हम गिर ना जाएं। तो धीरे धीरे से आंखों की आदत पड़ गई चलो अंधकार में, तो एक जगह जाके बैठ गए। हमने सोचा चलो, और उन्होंने सख्त मना किया था कि उच्चारण कुछ नहीं करना है, बोले जोर से जप भी नहीं कर सकते, चलो मन में जप करते हैं। तो हम बैठ के मन में जप कर रहे थे, फिर धीरे से हमने इस जगह से कुछ आवाज सुनी। उस जगह से सब अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन इतना तो पता चला कि ये कोई ध्यान कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कोई इनका ध्यान अलग ही हो रहा है कुछ। तो सभी लोग तो आराम एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं, ऐसे बस मुलायम वो दरी पे बैठे हैं, वो कौन ध्यान कर रहा है, क्या प्रकाश है, क्या है, क्या ध्यान है, ये सब चल रहा है कलयुग में। बेचारे लोग जो जान चाहते हैं कुछ करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में, उनको कहा जाता है कि आप ऐसे ध्यान को केंद्रित करो। तो ऐसे मन को केंद्रित, कृत्रिम रूप से मन को नहीं लगाया जा सकता, मन को वास्तव में नियंत्रण में लाना है तो कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अब क्रोध वेगम। हाँ,
मनुष्य को स्वयं सभी तरह का अपमान सहन
क्रोध वेगम, क्रोध ये भी बहुत जबरदस्त शत्रु है इंसान का। राजा सिकंदर का नाम आपने सुना है ना, स्कूल में इतिहास में पढ़ा होगा, सिकंदर अलेक्जेंडर। तो वो यहां आए थे भारत, यहां सिंधु नदी तक पहुंचे और सारे प्रांतों के ऊपर विजय प्राप्त करते करते सिंधु नदी तक आए और उन्होंने सोचा कि चलो अभी वापस जाना चाहिए, काफी दूर चले आए हैं और वापस जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हमने सुना है कि भारतवर्ष में ऐसे साधु संत बहुत होते हैं, तो ऐसे एक योगी को मुझे वापस ले जाना चाहिए मेरे देश में, ताकि वो कुछ ज्ञान दे सकें हमारे लोगों को और हमारे लोग जान भी जाएं कि दूसरे देशों में किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो एक योगी के पास आए, योगी देखे वहां को जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उस योगी के पास जाके राजा सिकंदर ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए मेरे देश में, मुझे आपको वापस ले जाना है। तो योगी ने कहा, नहीं, मैं इस सुंदर स्थान में बैठा हूं, मुझे इस स्थान को छोड़कर नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगा, नहीं आपको चलना होगा मेरे साथ में, नहीं आऊंगा। तो जब ऐसी बातचीत चलती रही तो राजा सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं, मैं सबसे बड़ा राजा हूं, यहां सारे विश्व सम्राट हूं और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो तुरंत क्रोधित होकर राजा सिकंदर ने अपनी तलवार निकाल ली। तो योगी ने कहा, करिए आप नहीं जानते, आपने पूछा कि तुम कौन हो, मैं बताता हूं, वास्तव में तुम मेरे स्वामी नहीं हो, तुम मेरे दास के दास हो। भाई क्या बात है, और भी गुस्सा हो गया राजा सिकंदर, मैं विश्व सम्राट हूं और कह रहे हो कि मैं तुम्हारे दासों का दास हूं, ऐसे क्यों? देखो बात सही है, तुम क्रोध के दास हो और मैं क्रोध का स्वामी हूं, समझ गए ना? तो क्रोध मेरे वश में है और तुम क्रोध के वश में हो, क्रोध मेरी सेवा में उपस्थित है परंतु तुम क्रोध की सेवा में उपस्थित हो, तो तुम मेरे सेवक के सेवक हो। तो राजा सिकंदर बुद्धिमान था, समझ गया हाँ ये वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, सच्ची ज्ञानी व्यक्ति है। तो भले कितना बड़ा राजा क्यों न हो, जब तक वो अपने मन को, अपने वाणी को, अपने क्रोध आदि को वश में नहीं कर सकता तो उसका राजा होने का क्या मतलब है। उससे बेहतर वो योगी जो कि एकांत स्थान में कहीं जंगल में बैठा है, उसके पास संपत्ति कुछ नहीं है लेकिन उसने अपने मन को, क्रोध आदि को वश में कर लिया है, तो कौन श्रेष्ठ है? तो इससे हम समझ सकते हैं कि वैदिक सिद्धांत या वैदिक दृष्टिकोण कुछ अलग ही है। अगर कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है यह समझने के लिए हमें वैदिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना चाहिए, साधारण दृष्टि से नहीं। तो क्रोध ये सबको जला डाल सकती है, हम सबको अनुभव है जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो हम क्या नहीं करते, क्या नहीं कहते, बाद में बहुत पछताते हैं, अरे अरे हम गुस्सा होकर ऐसा कर बैठे। तो गुस्से का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि साधारणतः क्रोध नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्रोध को रोका नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है? भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? जब कोई भगवान की निंदा करे या भक्तों की निंदा करे तब आपके समान हो जाना चाहिए, और अपनी निंदा करे तो फिर हमें बर्फ की तरह होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम उल्टा हो जाते हैं, नहीं है? जब हमारी निंदा होती है या दूसरों की निंदा होती है, भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा होती है, तो हमें आग के समान हो जाना चाहिए। अपनी निंदा होती है तो हमें बर्फ के समान होना चाहिए। लेकिन अक्सर उल्टा होता है ना, अपनी निंदा होती है तो आग के समान हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहां प्रभुपाद जी तीन उदाहरण दे रहे हैं। कौन से उदाहरण है ये? सबसे पहले
जगाई मधाई।
जगाई मधाई क्या उदाहरण है वो?
जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर बात किया तो चेतन महाप्रभु प्रकट होकर उनके ऊपर क्रोधित हुए, चक्र धारण कर दिया, उन्होंने मार दिया। नित्यानंद प्रभु ने उनको,
तो इससे क्या सीख सकते हैं?
अपने अपने ऊपर क्रोध, अपने भक्तों ऊपर कोई बात आए, भगवान की प्रति बात है, हमको उन क्रोध बताना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्रोध का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि उनके प्रिय भक्त और पार्षद नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था मधाई ने। ठीक है, दूसरा उदाहरण हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने क्या किया? लंका जला दी। क्यों? क्योंकि रावण कौन था? रावण ने क्या किया था? सीता देवी का अपहरण कर लिया था। तीसरा उदाहरण कौन सा है? अर्जुन का। तो अर्जुन का उदाहरण क्या है? अर्जुन ने उकसाया, कृष्ण भगवान ने उकसाया अर्जुन को कि युद्ध करो। और प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। युद्ध भूमि में क्या अर्जुन हरि बोल के युद्ध कर सकते थे? संभव नहीं है ना। युद्ध करना है तो क्रोधित होना ही चाहिए, नहीं तो युद्ध होगा कैसे? बिल्कुल, जैसे यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं त्रिनादपि सुने चेना। यही बात है कि अपने अहंकार को जब चोट पहुंचती है तब हमें चुप रहना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, घुमाएंगे आप इसको। खत्म नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब। जैसे मन को हम खत्म नहीं कर सकते, नहीं हम वाणी को खत्म कर सकते हैं, सबको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। केवल ईर्ष्या एकमात्र चीज है षड रिपुओं में से, जो कि भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती। तो फिर यह है, ये चार्ट है क्रोध वेगम, क्रोध का नियंत्रण। भगवान व भक्तों की निंदा करने वालों पर क्रोध का प्रयोग करना, तीन उदाहरण यहां दिए हुए हैं। एक श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया जगाई मधाई के ऊपर, विशेष करके मधाई के ऊपर, क्योंकि मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था। दूसरा उदाहरण है हनुमान जी का, जब उन्होंने लंका जला डाला। तीसरा उदाहरण अर्जुन का, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया। यही है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में ऐसे परिस्थिति अपने आप आ जाएंगे बिन बुलाए, लेकिन अधिकतर हम गुस्सा हो जाते हैं अहंकार की वजह से। ये बदजीव की कमी है, अधिकतर ये देखा जाता है। जब क्रोध आता है तो बस समझाने की, जब क्रोध आता है तो सहन करना पड़ता है। अन्यथा सहन करना चाहिए। हमें पुलिस केस में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों की जीव काटना वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां से अगर हम तर्क करके उसको हरा सकते हैं तो ठीक है, और अगर वो उचित नहीं है उस समय के लिए तो वहां से निकल जाना अच्छा है, ऐसे व्यक्ति का संग न करना ही अच्छा है। अपने विरुद्ध जो है वो सहन कर लेना चाहिए। अधिकतर लोगों को गुस्सा इसलिए आता है ना, दुनिया में देखा जाता है ऐसे, भाई उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, क्यों कहा, तो गुस्सा आ जाता है। हाँ, खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से मन को खत्म नहीं किया जा सकता, मन को या वाणी को भी खत्म नहीं किया जा सकता, इन सब को सकारात्मक रूप से भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से क्रोध को भी समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अवस्था के अनुसार भगवान की सेवा में इसका प्रयोग करना चाहिए। जब भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा होती है, जैसे समझ लीजिए कि आप मंदिर में हैं, दर्शन के लिए गए हैं, अचानक कोई व्यक्ति आता है और अर्चक विग्रह की ओर इस प्रकार से बढ़ता है कि मानो कुछ आक्रमण करने वाला है, तो क्या करेंगे हम, कुछ तो करना चाहिए ना। जैसे मायापुर में अनेक वर्ष पूर्व कई डकैत आए थे और वो विग्रहों के आभूषणों को चोरी करना चाहते थे, उन्होंने सोचा था कि इनके पास बहुत सोने के गहने वगैरह हैं तो हम चोरी करेंगे, तो वहां भक्तों ने बहुत जोरदार उनका सामना किया। और एक भक्त हैं भक्ति राघव महाराज, तो वो पैर खो बैठे, गोली मारी, वो भी गोली से गोलियां चल रही थी और उनका एक पैर चला गया, आज तक वो अभी उनके पास एक पैर नहीं है। तो ऐसे कभी कभी होता है, तो ऐसी अवस्था अगर आ भी जाए कोई जगह जहां ऐसे हो तो हमें करना चाहिए क्रोध का प्रयोग, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ठीक है, काफी समय हो गया, वैसे 6:35 हो गए, तो ठीक है। हाँ, तो था यही समाप्त करते हैं क्रोध वेगम पे, कल से जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम और आगे बात को बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल 4:30 बजे मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।